समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार अलका। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल, देयर इज अ लॉट दैट वी आर गोइंग टू अनपैक टुडे। एज अलका हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, वील शेयर द लेटेस्ट न्यूज, वील बी टेलिंग यू अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन मेट्रो सिटीज and we'll be exploring today's history. And today, it's 22nd August. So make sure, listeners, to stick around till the end. We'll begin with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज वॉर्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच बैठक में अन्य विकल्पों पर भी बातचीत होगी। श्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं और पोलैंड के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। कल रात वॉर्सो में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत सभी से जुड़ाव और सबका विकास और कल्याण चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि दशकों से भारत की तटस्थता की नीति रही है, लेकिन आज भारत की नीति सभी देशों से घनिष्ठ संबंध बनाने की है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि यह युग युद्ध का नहीं है। भारत संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और अब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के पहले चरण में कल वॉर्सो पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, इस यात्रा से भारत पोलैंड मित्रता को गति मिलेगी और दोनों देशों के लोग लाभान्वित होंगे। पिछले 45 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। अपने दो देशों की यात्रा के दौरान दूसरे चरण में प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलादिमिर जेलेंस्की के निमंत्रण पर कल यूक्रेन पहुंचेंगे। 1992 में दोनों देशों के संबंध शुरू होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा है।
In Andhra Pradesh, death toll has reached 17 in yesterday's reactor explosion at Essentia Pharma Company in Achutapuram of Annakapalli district. Chief Minister N. Chandrababu Naidu has announced that a high-level investigation would be conducted to determine the cause of the accident, with strict action to be taken against the factory management if found negligent. He held a teleconference with district officials, industries department, health department officials, district public representatives and ministers last night to discuss the aftermath of the tragic incident. The CM was briefed on the status of the injured and the treatment being administered. The Chief Minister emphasized the importance of saving lives and instructed that doctors from all departments be made available to provide the best possible care to the victims. Mr. Naidu is scheduled to visit Achutapuram today, where he will meet with the families of the deceased and those injured in the accident. He will also inspect the accident site to assess the situation.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनवीडिया कंपनी ने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को समर्थन देने का वादा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाभ उठाने और भारत की विशेष समस्याओं के समाधान के लिए एआई का उपयोग करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत की अपनी एआई चिप को विकसित करने पर भी चर्चा हुई। इस वर्ष मार्च महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 10,372 करोड़ रुपए के बजट आवंटित के साथ व्यापक राष्ट्रीय स्तर के इंडिया एआई मिशन की स्वीकृति दी थी। भारत का एआई मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में योजनाओं और साझेदारी के माध्यम से एआई नवाचार के लिए व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करेगा।
Madhya Pradesh has achieved a significant milestone by becoming the first state in India to formalize rules allowing the digital issuance of summons and warrants. This pioneering initiative permits the use of electronic methods such as email, messaging apps like WhatsApp and text messages in its judicial processes.
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में संचालित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना में मृतका की पहचान से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें। उच्चतम न्यायालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिकी मीडिया को निर्देश दिया कि वे मृतका के नाम के सभी संदर्भ और तस्वीरों के साथ वीडियो क्लिप तुरंत हटाएं। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश पर मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि ऐसी संवेदनशील सूचनाएं प्रसारित न हों। उन्होंने कहा कि निर्देश न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Union Minister of Textiles Giriraj Singh has highlighted the pivotal role of handicraft sector in the growth of Indian economy. Addressing the 24th Handicrafts Exports Awards in New Delhi yesterday, he noted that the handicrafts sector currently enjoys a growth rate of nearly 9 to 10%. On this occasion, the minister encouraged women to join the handicrafts sector. The Export Promotion Council for Handicrafts organized the event to honor the top exporters in the industry. Ajay Gupta CL Gupta Exports Limited received the Top All Handicrafts Award for both 2019-20 and 2020-21. Muzaffar Hussain from Jammu and Kashmir won the Lifetime Achievement Award.
Pehla Rashtriya Antariksh Divas 2024 कल देशभर में मनाया जाएगा। पिछले वर्ष इस दिन चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और शगुन ये हम सबको याद है कि वो कितना सुनहरा पल था और कितना बढ़िया था।
absolutely.
और कहते भी हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो ये निरंतर प्रयास जो होता है
right.
वो और दिसंबर में भी इससे आगे की जो गतिविधि है होगी।
We'll be knowing about that.
बिल्कुल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष के उत्सव का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये विषय समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहन प्रभाव पर जोर देता है। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस न केवल उत्सव का दिन है बल्कि परावर्तन, आत्मनिरीक्षण और भविष्य के रेखांकन का भी दिन है। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़कर लगभग $44 अरब हो जाएगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में पिछले एक महीने में देश भर में 1000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज का भी आयोजन किया गया।
Well, now let's share latest IMD update with you. India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall over the east, west, northwest and central parts of the country during the next 4 days. Heavy rainfall is also likely in some parts of the South Peninsula region during the next 7 days. IMD said that a low pressure area over North Bangladesh is likely to cause isolated, very heavy to extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya and Tripura during the next 24 hours. Meanwhile, Delhi and its adjoining parts witnessed very light rainfall during early morning.
और अब कुछ खेल की बात कर लें तो केरल सरकार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर सिजेश को 2 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। कल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केरल सरकार के जनसंपर्क विभाग ने कहा कि भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पीआर सिजेश ने पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल हासिल करके भारत और केरल को गौरवान्वित किया है।
Well, Alka, staying with hockey only, the Indian men's hockey team received a grand welcome by fans and Odisha government at Bhubaneswar Airport yesterday after winning absolutely this wonderful achievement, bronze medal at the recently held Paris Olympics. The Indian hockey team was honoured with a thrilling open-top bus parade in Bhubaneswar for their back-to-back Olympic glory, after which a walk of fame was organised for the champions, followed by a felicitation ceremony at the iconic Kalinga Stadium. Captain Harmanpreet Singh and star defender Amit Rohi Das presented a signed jersey to the Chief Minister of Odisha, Mohan Charan Manji. Meanwhile, ace defender Amit Rohi Das, who is also from Odisha, received a special cash award of 4 crore rupees from CM Mohan Charan Manji and Deputy CM Kanak Vardhan Singh Deo.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का, तो पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं शगुन।
राइट अलका, वील बी बिगिनिंग विद चेन्नई। IIT Madras and CMC Vellore have jointly developed a portable and affordable robotic device to offer physiotherapy for hand movement of recovering stroke survivors. The robot Pluto has interchangeable mechanical handles, each designed to train specific hand functions. A handle is connected to the robot and the patient's hand is secured to the handle. Robot detects the patient's hand movements and transmits this data to a computer to control a video game. It provides assistive force if needed. The device Pluto was inspired by the design of a mixer grinder, where a single motor drives multiple attachments. Pluto employs one motor and a variety of attachments to train different hand functions of patients. It is a compact tabletop that fits into a suitcase smaller than a regular check-in luggage. The robot is being evaluated across 9 clinics in the country. Now let's focus on Bengaluru. The Bengaluru South MP and BJP leader Tejaswi Surya has written to Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar to call for an urgent meeting to discuss heavy traffic congestion and jams frequently experienced in the city. He said that the meeting with the experts and people's representatives is essential to find a solution for the mobility crisis in the city. In this letter that is put up on X multi-blogging site, the Member of Parliament from Bengaluru highlighted that the city is crying for help and all should come together to improve the quality of life. He pointed out that the commuters are spending more time in mind-numbing traffic than the family and loved ones. Tejaswi Surya has said that city roads, including the small lanes in residential areas, are way beyond their carrying capacity and there is no space to make more roads. He has suggested Singapore-like restrictions on private vehicles and introduction of odd-even methods like the one in the national capital. Now let's turn our attention to Hyderabad. The union government provided T-Fiber with a long-term interest-free loan of 1,779 crore rupees in Telangana. The Union Minister of State for Rural Development and Communications, Dr. P. Chandrasekhar, answered enthusiastically. Sridhar Babu, Minister of IT and Industries, issued a letter noting 4 critical requests about T-Fiber and related difficulties. The letter was submitted by the T-Fiber delegation led by Managing Director Venu Prasad P. According to the minister, the state government has chosen the state-led implementation model for the BharatNet Phase 2 project. The T-Fiber project will connect 10,787 gram panchayats and their respective mandals and districts, as well as establish a state-of-the-art network operations center, NOC, in Hyderabad. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Delhi, Mumbai and Kolkata's updates will be shared by Alka.
बिल्कुल, दिल्ली की बात करें तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने चौथे चरण के अंतर्गत तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर के छतरपुर और छतरपुर मंदिर स्टेशन के बीच एक सुरंग निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ विकास कुमार की उपस्थिति में छतरपुर मंदिर स्टेशन पर 850 मीटर से अधिक लंबी सुरंग से टनल बोरिंग मशीन बाहर निकाली गई। DMRC ने बताया कि इस सुरंग का निर्माण 97 मीटर लंबी TBM की मदद से किया गया है। इस खंड पर अन्य समानांतर सुरंग का कार्य भी चल रहा है, जिसके अगले महीने तक पूरा होने की संभावना है। और शगुन, बात करें नमो रेल टिकट और दिल्ली मेट्रो टिकट। दिल्ली मेट्रो और नमो भारत रेल में यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC और दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने एकीकृत QR टिकटिंग प्रणाली के लिए आपस में समझौता किया है। इस प्रणाली के अंतर्गत अब यात्रियों को दोनों रेल में यात्रा के लिए अलग अलग टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक टिकट से ही यात्री दोनों रेल में यात्रा कर सकेंगे। ये बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी यात्रियों के लिए, और वैसे भी मेट्रो जो है वो दिल्ली की लाइफलाइन तो है ही।
आई एग्री विद यू टोटली।
RRTS ने बताया कि यात्री RRTS के कनेक्ट ऐप से नमो भारत और दिल्ली मेट्रो रेल का टिकट बुक कर सकेंगे। इसी प्रकार DMRC मोबाइल ऐप पर भी दोनों रेल की टिकट खरीदे जा सकेंगे। आरआरटीएस ने कहा कि यह सुविधा वन इंडिया वन टिकट पहल के अंतर्गत शुरू की गई है। बात कर लें दिल्ली एम्स की, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के चाइल्ड न्यूरोलॉजी विभाग और हंस फाउंडेशन ने मिलकर बच्चों में विकासात्मक देरी और अन्य मस्तिष्क विकारों की शीघ्र पहचान के लिए एक आधुनिक तकनीक तैयार की है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया के पहले चरण के अंतर्गत कुल 65,290 छात्रों ने दाखिला प्राप्त किया और दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया कि पहले चरण के अंतर्गत कुल 97,387 सीटें आवंटित की गई थीं। बात कर ले आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो महाराष्ट्र के उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने घोषणा की है कि सितंबर से राज्य भर के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई और मुंबई उपनगरीय प्रत्येक कॉलेज में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मंत्री लोढ़ा ने मुंबई उपनगर कलेक्टर को पत्र लिखकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते हमलों के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई का आग्रह किया है। मंत्री ने स्कूल परिसर में सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का भी निर्देश दिया। श्री लोढ़ा ने पत्र में यह भी सुझाव दिया कि स्कूल प्रशासन को लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों से सहायता लेनी चाहिए। पत्र में उल्लेख किया गया कि बच्चों को 1098 हेल्पलाइन पर समस्या की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और स्कूल में पोस्टर प्रदर्शित किए जाने चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। राज्यपाल मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विश्व उद्यमी दिवस पर उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम में बोल रहे थे। बात कर लें कोलकाता की, तो राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने कोलकाता के सोदपुर स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज पीड़िता के माता पिता से उनके आवास पर मुलाकात की। वो इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के डीआईजी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल सुहरता पॉल से अस्पताल में मुलाकात की। उम्मीद है कि सीआईएसएफ आज से अस्पताल की सुरक्षा की कमान संभाल लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोगों से स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन का घेराव करने का आह्वान किया है। शगुन, बात करें मौसम की।
Exactly.
और मौसम जो है वो बदलता रहता है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो इस वजह से बच के रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब चीजें भी इस मौसम में चलती रहती हैं। बिल्कुल
right.
तो दिल्ली की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
वेल अलका, इट्स मच द सेम इन चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। लाइट रेन एंड क्लाउडी स्काइज। चेन्नई इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज अगेन एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन। The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और बिल्कुल अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 22 अगस्त है,
राइट
तो 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तत्कालीन मद्रास की स्थापना की थी। 1848 में अमेरिका ने न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया और 1849 में इतिहास का पहला हवाई हमला, ऑस्ट्रिया ने इटली के शहर वेनिस में चालक रहित गुब्बारों से हमला किया।
इन द ईयर 1894 इंडिया विटनेस द बर्थ ऑफ द नेटल इंडियन कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी।
बिल्कुल, और 1851 में ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों के इलाकों की खोज हुई और वहीं 1910 में जापान ने 5 साल तक कोरिया का संरक्षण करने के बाद उस पर कब्जा किया। 1914 में ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच बेल्जियम में पहली मुठभेड़ हुई।
इन दी ईयर 1921 महात्मा गांधी इग्नाइटेड अ सिम्बॉलिक फ्लेम ऑफ रेजिस्टेंस बाय पब्लिकली बर्निंग फॉरन मेड क्लोदिंग। दिस ऑडेशियस एक्ट मार्क द इंसेप्शन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, अ कॉल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड द रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश गुड्स। In the year 1996, a wave of change swept through the city, formerly known as Madras, as it embraced its indigenous identity and was renamed Chennai. In the year 1986, deadly fumes from a volcanic eruption under Lake Neos in Cameroon killed more than 1,500 persons. In the year 1987, aircraft carrier ship of Indian Navy Virat joined in the fleet. In the year 1994, 24 Mahar soldiers were ambushed when the Indian contingent was trying to stem the war in Somalia. 7, including a JCO, lost their lives.
बिल्कुल, और 2007 की बात कर लें तो मिस्र के पुरातत्वविदों ने पश्चिम रेगिस्तान के सीवा क्षेत्र में लगभग 20 लाख साल पुराने मानव के पद चिन्हों का पता लगाया था। और अब बात कर लें व्यक्तित्वों की जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। शगुन एक छोटी सी कविता की एक उनका एक पैरा है कि आज जीत की रात पहर हुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीप समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ये 15 अगस्त पर कविता लिखी गई थी और इसके रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ था और हिंदी में उनकी कविता यात्रा का आरंभ 1941 में प्रकाशित मंजीर काव्य संग्रह से हुआ। और ये आपको बताएं कि ऑल इंडिया रेडियो में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे आप और लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती उन्हीं की संकल्पना का मूर्त रूप है। उनमें प्रगति और प्रयोगवादी धारा दोनों का समावेश है। उनका एक गीत छाया मत छूना मन और वी शैल ओवरकम का हिंदी भावांतरण जो है हम होंगे कामयाब अत्यंत लोकप्रिय रहा है।
ऑब्वियसली यस। वेल, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग एडवर्ड किंग, musician Edward King. He was a founding member of Strawberry Alarm Clock, the acid rock band formed in King's hometown of Los Angeles. Known for their 1967 hit single Incense and Peppermints, which King wrote with keyboard player Mark Witz, Strawberry Alarm Clock opened for the southern rock band Lynyrd Skynyrd during a run of shows in Jacksonville in the year 1968. Other songs that he wrote or co-wrote include I Need You, Saturday Night Special, Swamp Music, and now we'll let the music speak. So listen into the song Railroad.
आज हम याद कर रहे हैं हरिशंकर परसाई को। इन्होंने लिखा था कि जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब थाप पड़ी पगडोल उठा, औरों के स्वर में स्वर भर, अब तक गाया तो क्या गाया, जिस ओर उठी उंगली जग की, उस ओर मुड़ी गति भी पग की, जग के अंचल से बंधा हुआ खिंचता आया तो क्या आया। हम बात कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार हरिशंकर परसाई की। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनके व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा कर देती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने भीतर तक छुआ। उनकी भाषा शैली में एक खास प्रकार का अपनापन नजर आता है। हरिशंकर परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नर्क जहां तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर लिखा था। व्यंग के अलावा परसाई ने कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल और संस्मरण, तिरछी रेखाएं भी उनकी प्रकाशित हुई।
Right. Today we are also remembering Nina Mary Borden. She's an English novelist and children's writer. Her novels include On the Run, The Witch's Daughter, The Birds on the Trees, Carrie's War and The Peppermint Pig. Also, Who Calls the Tune, The Old Flamingo, Change Here for Babylon, The Solitary Child and many more. In the year 2004, she was awarded the Golden Pen Award by English Pen for a lifetime's distinguished service to literature. Also, we are remembering Dorothy Parker. She was an American poet and writer of fiction and also plays and screenplays. In the year 1929, she won the O. Henry Award for the best short story of the year with Big Blonde, which was a compassionate account of an aging party girl. Lemons for the Living and After Such Pleasures are collections of her short stories combined and augmented in the year 1939 as Here Lies.
बिल्कुल, और आज हम याद कर रहे हैं गोपी कृष्ण को। गोपी कृष्ण कथक के बनारस घराने के सबसे उत्कृष्ट प्रतिपादकों में से एक रहे। उनके प्रदर्शन, व्यक्तिगत व्याख्या, प्रदर्शन कौशल, अलौकिक गीत और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषता रखते थे। 22 अगस्त 1934 को कोलकाता में जन्मे गोपी कृष्ण का पालन पोषण उनके नाना स्वर्गीय पंडित सुखदेव महाराज ने किया, जो कथक नृत्य शैली के बनारस घराने के एक प्रसिद्ध उस्ताद थे। हालांकि 4 साल की उम्र से स्वाभाविक रूप से नृत्य करना शुरू कर दिया था इन्होंने, लेकिन प्रशिक्षण 11 साल की उम्र में कलकत्ता में उनके नाना के अधीन शुरू हुआ। गोपी कृष्ण उस समय केवल 17 वर्ष के थे जब उन्हें वीर सांताराम की झनक झनक पायल बाजे फिल्म मिली। इस फिल्म में उनकी भूमिका ने शास्त्रीय नृत्य को एक नया आयाम दिया। यह फिल्म भारत के नृत्य और सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर थी। और शगुन, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 घंटे 20 मिनट तक नृत्य करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। और 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहस्थी, महबूबा, दास्तान, उमराव जान, नाचे मयूरी जैसी कई फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफी की।
Today we're also remembering Claude Debussy. It's his birth anniversary. He was a French composer and he was among the most influential composers of the late 19th and early 20th centuries. His music was to a considerable extent a reaction against Wagner and the German music tradition. He regarded the classical symphony as obsolete and sought an alternative in his symphonic sketches, which was La Mer. His piano works include sets of 24 preludes and 12 etudes.
और आज जन्मदिन है कॉनिडेला शिवशंकर वर प्रसाद, समझ गई आप
जी।
आज चिरंजीवी का जन्मदिन है। वो भारतीय सिनेमा के सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। एक अभिनेता के साथ साथ वो फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ भी हैं। और 4 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु में 150 से अधिक फिल्मों के साथ साथ हिन्दी, तमिल और कन्नड़ में कई फिल्मों में अभिनय किया।
राइट।
मैं न मेरी, मैं न मैं तो तेरा हो गया, भर मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गया। मैं तुझ पे मरने लगा, प्यार तुझे करने लगा।
और शगुन, आज हम याद कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा विम्मी को, जिन्होंने आबरू, हमराज और पतंगा जैसे हिट फिल्मों में अभिनय किया। हमराज में सुनील दत्त के साथ इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही।
न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुराए।
और शगुन, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड। अलका सिंह और शगुन चोपड़ा को अनुमति दीजिए।
वेल ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।
घटा में